हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगली सुबह अनाही की नींद किसी के बार बार दरवाज़ा खटखटाने से खुली। उसने करवट के साथ अपनी आँखें खोली तो खुद को रूहान की बाहों में पाया। उसका एक हाथ रूहान के नंगे सीने पर था तो वहीं उसका चेहरा रूहान की बाजू पर टिका हुआ था। रूहान की आँखें बंद थीं और उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जिसमें वो काफ़ी चार्मिंग लग रहा था। अनारी की नज़र जैसे उसके मासूम से चेहरे पर पड़ी थी, वहाँ से हटाने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक ही फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और अनाही जैसे होश में लौटी। वो झट से बेड से उठकर बैठ गई और फिर जल्दी से रूहान को उठाते हुए बोली, चौहान जी उठिए, बाहर मामा आवाज़ लगा रहे हैं, अगर आपको ऐसे देख लेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उनको। रूहान ने नींद भरी आवाज़ में कहा, मैडम जी आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है, प्लीज़ सोने दीजिए ना थोड़ी देर। और अनाही ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, गॉड क्या करूं। उसने फिर से रूहान का हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा, प्लीज़ चौहान जी उठ जाइए। लेकिन उसकी कलाई पकड़ने पर ही उसे अंदाज़ा हुआ कि रूहान को फीवर है और वो जल्दी से हाथ बढ़ाकर बोली, मैंने रात को मना किया था बारिश में भीगने से, अभी देखो तबीयत बिगड़ चुकी आपकी। रूहान ने आंखें खोलकर माँ की तरफ देखा। चौहान की आंखें बहुत लाल थीं और उसका सर भी दर्द हो रहा था। उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, नहीं मुझे फीवर नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनाही ने गुस्से में कहा, हाँ मुझे दिख रहा है कि आप कितने ठीक हैं, अब जल्दी से उठ जाइए और सबसे पहले तो अपने कपड़े पहन लीजिए। बोलते वक्त अनाही ने अपनी नज़रें झुका लीं। तभी बाहर से काशी ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, बेटा तुम अकेले किससे बातें कर रही हो, चलो बाहर आओ, कल से कुछ खाया नहीं है, पापा परेशान हो रहे हैं। अनाही ने घबराकर फिर से रूहान की तरफ देखा, जो बार बार करवटें चिपकाते हुए उसे ही देख रहा था। अनाही बेड से उठी और रूहान को बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, अब जाइए वहाँ कपड़े पहन लीजिए, मैं देखती हूँ मामा को। रूहान उठा और फिर धीमे कदमों से चलता हुआ बाथरूम चला गया। उसके जाने के बाद अनाही ने गहरी सांस ली और फिर दरवाज़ा खोला। सामने काशी खड़ी थी। काशी ने जल्दी से कमरे में झांकते हुए कहा, कौन है यहाँ, तुम किसी से बातें कर रही थी? अनाही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने पति से बातें कर रही थी, और फिर तेज कदमों से कमरे से बाहर आ गई, जहाँ हॉल में राधे श्याम सोफे पर बैठा था और उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। अफकोर्स उसे अपनी बेटी को परेशान करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं था कि वो अनाही से प्यार नहीं करता है। अनाही तेज कदमों से जाकर उनके पास बैठी और फिर उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, पापा आपको क्या हो गया है, आप तो ऐसे नहीं थे, आपकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया है, अपनी मर्जी से जहाँ मेरी शादी तय की थी मैंने वहीं शादी की है, उसके बाद अगर अब आप मुझे बोलेंगे कि मैं उस इंसान को छोड़ दूँ तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ। आपको पता है ना आपकी बेटी कितनी लॉयल है, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती हूँ, और उस इंसान को मैंने अपने दिल से अपनाया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। हमारे रिश्ते की नींव इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि कुछ फोटोज देख कर ही रिश्ता खत्म हो जाए। राधेश्याम को अनाही की बातें समझ आ रही थीं, लेकिन वो अपने दिल को कैसे समझाएं कि उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। अनाही ने देखा राधेश्याम बहुत नर्वस थे और उनके हाथ भी कांप रहे थे। उसने राधेश्याम के दोनों हाथ पकड़कर अपने हाथों में लेते हुए कहा, पापा आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है क्या? राधेश्याम ने आंखें उठाकर अनाही की तरफ देखा। अनाही ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, क्योंकि मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है, आपने मेरी शादी तय की थी और आपकी पसंद लाजवाब भी थी, अब आप खुद की पसंद पर ही शक कर रहे हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, और वो लड़की जो यहाँ तक आपको सिर्फ फोटो देने आई थी, आप सोचो वो कितनी बुरी होगी, अगर रूहान जी सच में उससे प्यार करते हैं और वो भी उनसे प्यार करती तो क्या वो कभी ऐसा करती? नहीं ना, एक आशिक कभी अपने चाहने वाले का बुरा नहीं कर सकता है, और वो तो खुद कहती थी आप ये रिश्ता तोड़ दें, तभी तो यहाँ आई थी वो। कुछ देर की खामोशी के बाद राधेश्याम ने कहा, मैंने देखा बाहर दामाद जी की गाड़ी खड़ी है, लेकिन मुझे वो कहीं नज़र नहीं आए। ये सुनकर अनाही थोड़ा सिर झुक गई। अब वो कैसे बताए कि रूहान पूरी रात उसके साथ था। राधेश्याम ने फिर अनाही के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, एक सच्चाई है बेटा जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। उनके भरे गले से ये आवाज़ बहुत मुश्किल से निकली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही हो ये बोलने में। अनाही जल्दी से बोली, ऐसा क्या है पापा और आपकी आंखों में पानी? घबराइए मत, अगर कोई बात आपने मुझे नहीं बताई तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। मुझे इसके लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, आप परेशान मत होइए। राधेश्याम का चेहरा लाल हो गया था। उसने एक हाथ से अपनी आंखों के किनारे पहुँचते हुए कहा, मुझे ये बताना था कि तुम काशी की बेटी नहीं हो। ये सुनकर भर से अनाही का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने जितनी मजबूती से राधेश्याम के हाथ पकड़े थे, अब वो पकड़ ढीली पड़ गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने बिना पलक झपकाए धीरे से कहा, क्या बोल रहे हैं पापा, आप होश में तो हैं? मैं अगर माँ की बेटी नहीं हूँ तो किसकी बेटी हूँ मैं? कहते वक्त अनाही की आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और उसके पापा ऐसा कोई राज उनसे छुपा कर बैठे हैं इसका तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था। राधेश्याम ने जल्दी से अनाही के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए कहा, ध्यान से सुनो मेरी बात, मुझे तुम्हें सब बताना है। मैं अपने दिल पर बोझ नहीं रख सकता हूँ। मैंने तुम्हें और तुम्हारी छोटी बहन दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। जितना प्यार उसे दिया है उतना ही तुम्हें देने की कोशिश की है। राधेश्याम की आंखें भर आईं और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल को भिगोने लगे। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका मन भी नहीं कर रहा था कि वो राधेश्याम की पूरी बात सुने। इसलिए उसने जल्दी से कहा, मुझे कोई राज नहीं जानना है बाबा, आप मेरे पापा हैं और वो मेरी माँ, बस मेरी जिंदगी का यही सच है। राधेश्याम ने दो तीन बार ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। हमेशा तुमने विवाह को खुश करने की कोशिश की है, कभी अपना ख्याल नहीं किया। बस यही वजह थी जिसकी वजह से काशी तुमसे बहुत प्यार करती है। पहले शुरू में तुमसे प्यार नहीं करती थी, उसे नफरत थी तुमसे। अनाही ने लगभग रोते हुए कहा, बस करिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इतना बोलकर उसने एक झटके से राधेश्याम के हाथ छोड़ दिए और सोफे से उठने लगी। तब तक काशी भी वहां आ गई। वो दूर से ही उन दोनों की बातें सुन रही थी। काशी ने अनाही के पास आकर उसे अपने गले लगाते हुए कहा, एक बार सुन लो अपने पापा की बात। वो पूरी रात रो रहे थे, उन्होंने भी खाना नहीं खाया है। वो कभी तुम्हें दुखी नहीं रहने देना चाहते और वो बस खुद को कोस रहे थे कि काश उन्होंने सब तुम्हें पहले बता दिया होता तो शायद उनके डर की वजह तुम्हें समझ आती। हर इंसान की जिंदगी में एक ट्रॉमा होता है और अगर वो दुखती रग किसी के हाथ लग जाए तो वो इंसान चाह कर भी अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख सकता। बस यही तुम्हारे पापा के साथ हुआ था, वरना वो क्यों अपनी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ने की बातें करेंगे। मैंने भी उनसे बहुत लड़ाई की है कि वो सीधा डाइवोर्स की बात कैसे कर सकते हैं।
अनाही ने काशी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, माँ, मैं सब सुन लूंगी, लेकिन ये नहीं कि आपने मुझसे कभी नफरत की थी और आप मेरी माँ नहीं है। ये क्या बात हुई? अगर भगवान भी आकर मुझे ये सब कहेंगे तो मैं उन पर भी यकीन न करूं। काशी ने अनाही का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उसके माथे को चूमा और कहा, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानती हो तो अपने पापा की सारी बात सुनो। अनाही ने हैरानी से काशी की तरफ देखा, तो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक चुकी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके दिल पर बहुत बड़ा सा पत्थर रख दिया हो और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही हो। काशी ने उसे वापस राधेश्याम के पास बैठा दिया और फिर खुद भी उसके बगल में बैठ गई। अनाही ने कन्फ्यूजन से राधेश्याम की तरफ देखा।